बाण के काव्य में हास्य रस का भी पुट मिलता है। कादंबरी में रतौधी आने वाले बहरे बूढ़े द्रविड़ धार्मिक के चित्रण में हास्य रस की अभिव्यंजना है। माता अंबिका के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने से उसके काले ललाट पर गुमड़ा पड़ गया। किसी पाखंडी ने उस बेचारे द्रविड़ धार्मिक को सिद्धि प्राप्त करने का अंजन दे दिया, जिससे उसे सिद्धि तो क्या मिली, एक आँख तो जाती रही, अब दूसरी आँख के नेत्र ज्योति बनाए रखने के लिए दिन में तीन तीन बार सुरमा लगाते लकड़ी की सलाई ही घिस डाली थी। वह दिन भर मच्छरों की भिनभिनाहट जैसा बेसुरा गाता था। मजबूरी में उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ था। अन्य देशों में आई बूढ़ी तपस्विनों पर वह स्त्री वशीकरण चूर्ण आजमाया करता था। बंदर ने उसकी नाक को खरोच डाला था और रिछों ने उसके कपोलों पर अपने नाखूनों की आजमाइश की थी। होली के हुड़दंग में प्रायः लोग एक बढ़िया नौकरानी को टूटी खाट पर बिठाकर उन बूढ़े महाशय के साथ उनका पाणी ग्रहण कराते थे। हर्षचरित में जब हर्ष के जन्मोत्सव के समय नाचती हुई रानियां बूढ़े कचुकियों की गर्दन में स्वर्ण मेखला डाल देती हैं, इससे हास्य का पुट है। हर्षचरित में अनेक दुखद घटनाएं घटती हैं। उसमें प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण रस के स्थायी भाव शोक का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। कादंबरी में सुख द्वारा कथा कहा जाना, पुंडरीक का शरीर दिव्य पुरुष द्वारा आकाश में ले जाया जाना, कपिंजल का उसके पीछे उड़ना, शापवश घोड़ा बनना, जल में नहाते ही फिर पुराने शरीर में आ जाना, जन्म जन्मांतरों के बाद भी चंद्रापीड और पुंडरीक के शरीर में विकार न आना, शुक और राजा शूद्रक का शरीर काठ का हो जाना आदि घटनाएं अद्भुत रस की व्यंजना कराती हैं। इनके अतिरिक्त सबरों के वर्णन में भयानक रस, महर्षि जबाली के आश्रम में शांत रस, बूढ़े द्रविड़ धार्मिक तथा सबरों के वर्णन में ही विभत्स रस तथा हर्षचरित के ग्रह वर्मा के वध तथा राज्यवर्धन की हत्या पर क्रमशः राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के क्रोध वर्णन में रौद्र रस की व्यंजना हुई है, जिससे प्रमाणित होता है कि बाण प्रसंगानुकूल रस की अभिव्यक्ति में कुशल हैं। बाण के रस परिपाक विषयक प्रयत्न की सफलता का मुख्य कारण उनका अपार शब्द भंडार एवं लोक जीवन का अनुभव है। यही कारण है कि गोवर्धनाचार्य जैसे विद्वानों ने उन्हें वाणी का अवतार माना है। जाता शिखंडिनी प्राक यथा तथा वगच्छामि प्रगल्भ्यम अधिकमाप्तु वाणी बाणो वभूव।